स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से आमोस नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है पाप का न्यायोचित दंड। श्रोताओ हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तू ही दाता विश्व
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार अपने मित्रों के साथ इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने कार्यों को करता है। अर्थात हमने देखा है कि परमेश्वर दंड से पहले हमें चेतावनी देता है ताकि हम उससे बचने पाएं। तो इससे पहले कि आज हम सब अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें फिर से यह अवसर दिया है कि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को, जो इस समय अलग अलग स्थानों पर बैठकर आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, प्रभु जी आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दें ताकि आपके वचन को स्वीकार करने पाएं और उसके अनुसार चलने पाएं। हर एक प्रकार की बुराइयों से, बुरी बातों से, बुरी संगति से आप उनकी रक्षा करें ताकि वे आपके डर भय में, पवित्रता में अपना जीवन बिताने पाएं। आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आमोस की पुस्तक उसके 4 अध्याय से अध्ययन को आरंभ करेंगे। अध्याय 4 से आरंभ करके हम 3 अध्यायों का क्रम देखेंगे जो विशेष करके इसराइल अर्थात उत्तरी राज्य के 10 गोत्रों से संबंधित है। अध्याय 4 में वर्णन है कि परमेश्वर ने पहले भी इसराइल को पाप का दंड दिया था। अध्याय 5 में उसके भावी दंड का उल्लेख है और अध्याय 6 में आमोस उनसे आग्रह करता है कि वे पापों से मन फिराएं। यहां आप देखेंगे कि आमोस की भविष्यवाणियां इसराइल के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी अर्थपूर्ण है। आमोस इसराइल को परमेश्वर के निकट आ जाने के लिए बुला रहा है, वह तीक्ष्ण व्यंग करता है। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए इस अध्याय में प्रवेश करते हैं। अध्याय 4 उसके 1 पद में लिखा है, हे बाशान की गायो, यह वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो और अपने अपने पति से कहती हो, ला दे हम पिए। यहां पर लिखा है, हे बाशान की गायों, यर्दन के पूर्व में गिलाद के पर्वतों और उत्तर में हरमन पर्वत के मध्य स्थित बाशान क्षेत्र है, यद्यपि वह प्रतिज्ञा के देश का भाग नहीं था, 3 गोत्र वहां बस गए थे क्योंकि वह एक उर्वर क्षेत्र था और वहां की गायें प्रसिद्ध थीं। यह क्षेत्र उत्तरी राज्य में आता था, वहां हरियाली की बहुतायत के कारण गायें हृष्ट पुष्ट रहती थीं। आमोस किसे संबोधित कर रहा है, या यूं कहें कि आमोस किसे संबोधित कर रहा था? गाय स्त्रीलिंग है, इसलिए कुछ लोगों का विचार है कि वह वहां की विलासप्रिय धनवान स्त्रियों को संबोधित करता है। उनकी विलासिता के कारण गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा था। आमोस कहता है, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो, कोई भी देश उसकी स्त्रियों के रहन सहन से पहचाना जाता है कि उसकी नैतिकता और समृद्धि का स्तर क्या है। अतः आमोस स्त्रियों को ही संबोधित करता है, परंतु मेरे विचार में वह वहां के शासकों को संबोधित करता है। वह स्त्रीलिंग का उपयोग क्यों करता है? क्योंकि वे समलैंगिक थे। रोमियों को लिखे पत्र के पहले अध्याय में पौलुस समलैंगिकता के लिए परमेश्वर के दंड का उल्लेख करता है। इतिहास से प्रकट है कि किसी देश के पतन के समय समलैंगिकता उभर आती है। रोम के पतन का कारण भी यही था, नीरो समलैंगिक था। उसे पागल कहा गया है और यह सच है। उसके महल में एक कक्ष कल्पना से परे यौनाचार के लिए था। वहां वह अपने समलैंगिक तृष्णा को तृप्त करता था। आज समलैंगिकता के विषय चेतावनी देने के लिए आमोस की आवश्यकता है, क्योंकि यह चारों तरफ बहुत तेजी से फैल रही है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं आमोस 4:2 में, परमेश्वर यहोवा अपने पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछली की वंशियों से खींच ली जाएंगी। परमेश्वर कहता है कि उत्तरी राज्य की प्रजा कांटे में फंसा कर ले जाई जाएंगी। मनुष्य किसी भी पाप के कांटे में फंस सकता है। परमेश्वर कहता है कि वे दंड के कांटे में फंसेंगे, वे घसीट कर देश से बाहर ले जाए जाएंगे। इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि उन्हें जीतने वाली सेना अपने बंदियों को नाक में नकेल डालकर ले जाती थी। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार उनका हालत रहा होगा। आमोस 4:3 में लिखा है, तुम बाड़े के नाकों से होकर सीधी निकल जाओगी और हरमोन में डाली जाओगी। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के कहने का अर्थ है कि वह यह ना सोचे कि वे धनवान हैं या शासक हैं तो बच जाएंगे। इतिहास से प्रकट होता है कि जब अश्शूरों ने उन पर आक्रमण किया तब वे उनके राजा को भी बंदी बनाकर ले गए थे। बेबीलोन ने भी यहूदा के राजा को बंदी बनाया था। मेरे मित्रों, आइए अब हम उनके बंदी बनाए जाने का वर्णन देखें। आमोस 4:4-5 में लिखा है, बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो, अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो, धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इसराइलियों ऐसा करना तुमको भाता है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, आप यहां आमोस का व्यंग समझ रहे हैं ना? बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो। गिलगाल का अर्थ है चक्कर, अर्थात चक्कर काटते रहो। यह वह स्थान है जहां इसराइली यर्दन पार करके सबसे पहले पहुंचे थे। वह स्थान उनके लिए एक पवित्र स्थान बन गया था। यहां आगे चलकर उन्होंने मूर्ति पूजा आरंभ कर दी थी। अतः आमोस उनसे कहता है कि वे वहां अपने अपराध बढ़ाएं। जैसे आज हम कहें आराधनालय में आकर पाप करो। आमोस कर्कश व्यंग कर रहा है। वह उन्हें जगाना चाहता था कि वे देखें कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं। मेरे मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कभी कभी आराधना में जाना भी खतरनाक होता है? शैतान भी आराधना में जाता है। वह रविवार को शीघ्र जागकर उठकर उस आराधना में जाता है जहां परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है कि यथा संभव हानि पहुंचाए। यही कारण है कि हमें वचन के प्रचारकों और बाइबल शिक्षकों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अन्य सब कलीसियाएं और पंथ उसके अधीन है। वह वही ध्यान देता है जहां आत्मिकता है और वचन का सच्चा प्रचार किया जाता है। यीशु अपने सांसारिक जीवन में जब उसके बैरी षड्यंत्र रच रहे थे तब अपने शिष्यों के साथ था। आप सोचेंगे कि वह स्थान सबसे पवित्र स्थान था। आपके विचार में शैतान तो उसके बैरियों की अगुवाई कर रहा होगा। सच तो यह है कि उस रात शैतान यीशु के कक्ष में था जबकि उसे वहां आमंत्रित नहीं किया गया था। वह यहूदा में अंतर्वासी था। इसी प्रकार वह हमारी आराधनालयों में भी सेवकों या संडे स्कूल शिक्षकों या सदस्यों में से किसी एक में घुसकर प्रवेश करता है। उसकी युक्तियों को समझने से चूकना हमारी त्रासदी है। मेरे प्रियो, आमोस के युग में इसराइल बड़ी पवित्रता से आराधना में आता था। आमोस कहता है कि वे खमीर का भोग लगाते थे, जबकि पुराने नियम लय व्यवस्था में खमीर को पाप का सूचक माना गया है। उसे अनुचित शिक्षा और दुराचार का प्रतीक कहा गया है। इसराइल में फसह पर, अखमीरी रोटी के पर्व पर और पहले फलों के पर्व पर खमीर का उपयोग मना था, परंतु पेंतिकोस्त के पर्व में खमीरी रोटी चढ़ाने का निर्देश था। लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय में हम इसे पाते हैं। पेंतिकोस्त कलीसिया को आरंभ का सूचक है। अतः आज ऐसी कोई कलीसिया नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत चूक या पाप न हो। यही कारण था कि पेंतिकोस्त के पर्व में खमीरी रोटी चढ़ाई जाती थी। लय व्यवस्था की पुस्तक 7 अध्याय के 12 पद में धन्यवाद की भेंट में खमीर होता था। यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अखमेरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमेरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाए। यह परमेश्वर का पक्ष था। प्रभु यीशु ने हमारे लिए परमेश्वर से मेल करवाया, क्योंकि यह भेंट प्रभु यीशु का प्रतीक थी, इसलिए इसमें खमीर नहीं था। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद में यह स्पष्ट किया गया है। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अब दूसरी भेंट 7 अध्याय के 13 पद में मनुष्य का पक्ष है, और वह अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ खमीरी रोटियां भी चढ़ाए। मेरे मित्रों, यह हमारे जीवन में भी प्रासंगिक होता है। हम परमेश्वर को अपने जीवन समर्पित करते हैं और इसे सांसारिक रूप से अभिषेक करना कहते हैं, जो वास्तव में एक अनुचित शब्द है, क्योंकि अभिषेक का अर्थ है परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराया जाना, जो मनुष्य के लिए संभव नहीं। यही कारण है कि रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 1 पद में हमें कहा गया है कि हम परमेश्वर को जीवता बलिदान चढ़ाएं। हम कभी सिद्ध नहीं हो सकते, हम में कुछ तो खमीर होगा ही। यदि आप सिद्धता की प्रतीक्षा करें तो संपूर्ण जीवन ही प्रतीक्षा करते रहेंगे। अतः आमोस उनसे पाप करने का व्यंग करता है, तो वह कहता है कि वे खमीरी रोटी की भेंट चढ़ाएं। वह अखमीरी रोटी चढ़ाने की बात नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि वे जीवित एवं सच्चे परमेश्वर से दूर थे, अतः उनकी भेंट केवल भ्रष्ट ही हो सकती थी, जिसे परमेश्वर कभी स्वीकार नहीं करेगा। आमोस परमेश्वर के वचन का अति प्रवीण प्रचारक था। मेरे प्रियो, अगले रविवार जब आप आराधना में जाने के लिए सज रहे हैं तो घुटनों पर गिरकर अपने हृदय की दशा को जांचें। जानें कि क्या आप आराधना में एक स्वच्छ हृदय के साथ में जा रहे हैं। क्या आपके मन में कुछ ऐसा है जो आपके मुंह से निकले और प्रभु के प्रयोजन को हानि पहुंचाए? आमोस का संदेश आज भी व्यवहारिक है। मेरे विचार में आज की कलीसियाओं को आमोस की आवश्यकता है। आज किसी को पाप का कठोर वचन सुनाना है, न कि मीठी मीठी बातों से कलीसिया का मन बहलाना है, उनकी समस्याओं का समाधान सुझाना है। पाप हमारी कलीसियाओं में, हमारे मनों में व्याप्त है। हमारे मन के पाप पर जय पाना ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। परमेश्वर के साथ उचित संबंध बनाना हमारी समस्या है। मेरे प्रियो, अब आमोस इसराइल को परमेश्वर के पूर्वकालीन दंड का स्मरण कराता है। आइए हम पढ़ें आमोस 4 अध्याय उसके 6 पद। लिखा है, मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। उनके दांत इसलिए साफ नहीं थे कि उनके पास अच्छा दंतमंजन था, परंतु इसलिए कि उनके पास खाना नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें अकाल ग्रस्त किया, परंतु उनकी आंखें नहीं खुली। तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए, उसका उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। आमोस 4:7-8 पद में लिखा है, जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसा कर दूसरे में न बरसाया, एक खेत में जल बरसा और दूसरे खेत में जिसमें न बरसा वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए। तो भी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर मौसम को अपने वश में रखता है। परमेश्वर ने फसल काटने के समय 3 वर्ष वर्षा रोक दी थी। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने एक नगर को वर्षा दी और दूसरे को नहीं दी। वर्षा संयोगवश नहीं होती है, वह परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। पानी की कमी के कारण वे दूसरे नगर से पानी लाते थे, उन्हें परमेश्वर के पास आना था, परंतु परमेश्वर कहता है कि तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। मेरे प्रियो, मुझे याद है जब मैं छोटा था तब हमारे यहाँ भी अकाल पड़ा और पीने का पानी सूख गया। उस समय हमें एक नदी से पानी लाना पड़ता था जिसमें कभी कभी बहुत गंदे पानी होते थे। मैंने ऐसा पानी अपने जीवन में कभी नहीं पिया। अतः कुछ लोग आसपास के नगरों से पीने का पानी लाकर रखते थे। ऐसा ही आमोस के युग में भी हुआ था। यह परमेश्वर की चेतावनी थी, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आमोस 4:9 में लिखा है, मैंने तुमको लूह और गेरोई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए, यहोवा की यही वाणी है। लूह और गेरोई, उनकी फसलें गर्म हवा से जल गई और नमी की कमी के कारण गेरोई फूटने लगी थी और उनकी फसलें टिड्डियां खा गई थी, परंतु वे फिर भी परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े। आमोस 4:10 में लिखा है, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए, यहोवा की यही वाणी है। मरी, मृत देहों की दुर्गंध उन तक पहुंचाए, परंतु वे फिर भी परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। आमोस 4:11 में लिखा है, मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए, यहोवा की यही वाणी है। कुछ टीकाकारों के अनुसार यह पूर्वकालिक विपत्तियों को एक प्रकार से समाकालन है, परंतु मैं इस व्याख्या पर संदेह करता हूँ, क्योंकि योना की पुस्तक में इस समय अशुर छुटपुट हमले करके उन्हें बंदी बनाकर ले जाते थे। परमेश्वर अशुरों को अनुमति दे रहा था कि वे चिड़ियों के समान यहां वहां मुंह मारकर उन्हें हानि पहुंचाएं। उनके लिए यह चेतावनी थी, परंतु उन्होंने परमेश्वर की ओर मन नहीं फिराया। लिखा है, तुम मेरी ओर फिरकर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। आमोस 4:12 में लिखा है, इस कारण हे इसराइल, मैं तुझ से ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूं, हे इसराइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। मेरे प्रियो, परमेश्वर उन्हें स्पष्ट नहीं बताता है कि वह क्या करेगा, वह बस इतना ही कहता है, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, मैं तुझ में यह काम करने पर हूं। वह अकस्मात ही कुछ करेगा, और अब हम जानते हैं कि अशुर अकस्मात ही आए थे और उन्हें बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने परमेश्वर का विश्वास नहीं किया और उसकी ओर नहीं फिरे। परमेश्वर अश्शूरों के दंड से भी आगे की बात कहता है, हे इसराइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा, अर्थात अश्शूर तुम्हें जान से मार डालेंगे। मरणोपरांत परमेश्वर को लेखा देने के लिए तैयार हो जाओ। मरणोपरांत सबको परमेश्वर के समक्ष खड़ा होना होगा। यह आज के लिए भी संदेश है। मेरे एक मित्र को परमेश्वर ने कठोर दंड दिया। वह दंड पाने के बाद कहता है, मेरी चिंता का विषय यह है कि मुझे मरणोपरांत भी परमेश्वर के समक्ष खड़ा होना होगा। मैंने उससे कहा कि मरणोपरांत तो मुझे भी उसके सामने खड़ा होना है और मैं तो सोचकर ही कांप उठता हूं, परंतु मसीह में होने के कारण मुझे साहस होता है, क्योंकि वह मुझे नहीं परंतु प्रभु यीशु को देखेगा। उसने कहा, बस यही मेरी भी एक आशा है। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आपकी आशा क्या है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे सामने खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। जो कोई मसीह को ग्रहण किए हैं वे इसके द्वारा खरीद लिए गए हैं और बचाए गए हैं, परंतु जिन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया है, मन नहीं फिराया है, पापमय जीवन जी रहे हैं, तो उनको न्याय का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। अवश्य अपने विचार करें, मन पर विचार करें और अपने आप को देखें कि आप कहां हैं, ताकि आप प्रभु से सहायता ले सकें। प्रभु आप सबके साथ हो।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। I'm not afraid to die.